दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कई जिलों में भारी क्षति। सेना के 23 जवानों समेत कई लोग लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की जमानत मंजूर की। बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में मूसलाधार बारिश। और भारत ने हांगचौ एशियाई खेलों में 74 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तीरंदाजी के मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण और बॉक्सिंग में लवलीना ने रजत पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। सिक्किम के मंगन जिले में लोनप झील के पास बादल फटने के कारण तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। अचानक आई इस बाढ़ की चपेट में आने से पेक्योंग जिले में सैन्य प्रतिष्ठान के 23 जवानों के लापता होने की खबर है। बारदांग में कई वाहन भी बाढ़ में बह गए हैं। यहां से एक व्यक्ति को बचाया गया है। मंगन, गंगटोक, पेक्योंग और नामची जिलों में भारी नुकसान की खबर है। कई पुल टूट गए हैं और मकान बह गए हैं। फिदांग और दिक्चू में भी मकानों को नुकसान पहुंचा है। मंगन जिले में संचार नेटवर्क बाधित हुआ है। सांग खलांग में जीआरईएफ के दो कर्मी लापता हैं। तुंग में पुलिस बैरक बह गया है और चार लोग लापता हैं। राज्य आपदा राहत बल ने गंगटोक में 25 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। नामची जिले में एलडी काजी पुल और प्रणेली इंद्रेणी पुल भी बह गए हैं। लगभग 500 लोगों ने प्रणामी मंदिर में बने राहत शिविरों में शरण ली है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सिक्किम का संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कम से कम 4 स्थानों पर बाधित हुआ है। इस बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार लोगों को सुरक्षित निकालने और उनके पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के प्रबंध कर रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने सिंगताम के कम्युनिटी सेंटर में संबंधित अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल, गया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, अररिया और गोपालगंज सहित 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी, उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार तथा आसपास के हिस्सों में बहुत भारी बारिश की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मेघ गर्जन और बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के समय बाहर नहीं निकलने की अपील की है। इधर राज्य में आज सबसे अधिक 100 मिलीमीटर बारिश रोहतास जिले के दिनारा में रिकॉर्ड की गई। कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के उत्तरी भागों में भी अगले 2 दिनों तक अत्यधिक तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत के अनेक भागों में अगले 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ और भागों से वापसी कर ली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से संबंधित हैं। श्री मोदी इंदौर में लाइट हाउस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इससे 1,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री 48 अरब रुपए की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 18 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इनमें कटनी विजयवाड़ा के बीच 102 किलोमीटर लंबी लाइन का दोहरीकरण करना शामिल है। श्री मोदी राजस्थान के जोधपुर में लगभग 5000 करोड़ रुपए लागत की सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीबीआई की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती को नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद इस महीने की 22 तारीख को उन्हें बुलाया था। प्रत्येक आरोपी से 50,000 रूपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 16 तारीख को होगी। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो इस मामले में सभी अभियुक्तों को आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी करेंगे। मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और बैंक रेट 6.75% है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरू में केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की उपस्थिति में 2 सीट वाला एलसीए तेजस लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपा। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उन्नत क्षमताओं से लैस एलसीए तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करता है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो स्वदेशी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है।
एचएएल ने जो मेहनत करी है, जब से एचएएल का जन्म हुआ है, उस इतिहास को देखिए, आज इतिहास बदल दिया है, जिससे मैं हृदय से आप लोगों को बधाई देता हूं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, इंडिजिनस हों, आज देखिए विश्व में क्या है, हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है। सब लोग भारत भारत मोदी मोदी बोलते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इतना पुख्ता हो रहा है कि आप जानते हैं कोई क्षेत्र पीछे नहीं है।
बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के दूसरे भाग की रिपोर्ट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में सर्वदलीय बैठक में ये जानकारी दी। ये रिपोर्ट आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत करती है। बिहार सरकार ने सोमवार को इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार राज्य की जनसांख्यिकी में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व स्पष्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का भ्रष्टाचार एक एक कर उजागर हो रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे का हवाला देते हुए पार्टी ने आरोप लगाया कि ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले में शामिल थे। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कथित शराब घोटाले को जानबूझकर बनाया गया मामला बताया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद करगिल के चुनाव के लिए मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। 26 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहली बार परिषद का चुनाव M2 टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से हो रहा है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और बीमार लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार का मानना है कि इनकी गतिविधियां देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा हैं। असम सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोल्हा के सामाजिक आर्थिक आकलन की प्रक्रिया शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने आज मोबाइल हस्तचालित उपकरण की शुरुआत की। इससे बैंक के ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होगी। इस उपकरण से ग्राहकों को घर बैठे नकदी की निकासी, नकदी जमा करने, धनराशि के हस्तांतरण, बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस उपकरण से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को विशेष लाभ होगा। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC ने 60 करोड़ डॉलर का भारत जापान कोष शुरू करने के लिए समझौता किया है। ये संयुक्त पहल जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत जापान के बीच सहयोग और निवेश को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार इस कोष में 49% अंशदान देगी। शेष 51% अंशदान JBIC की ओर से किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार इस महीने के अंत तक देश में अवैध रूप से रह रहे सभी प्रवासियों को निष्कासित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों के अधिक प्रभावित होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने हांगचोउ में 19वें एशियाई खेलों में 74 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आज भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 27 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ 4थे स्थान पर है। भारत की लवलीना बोरगोहिन ने रजत पदक अपने नाम किया। एशियाई खेलों के लिए खेल डेस्क से एक रिपोर्ट।
चीन के होंगजाओ में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी स्पर्धा में ज्योति सुरेखा विन्नम और ओजस देवताले की जोड़ी ने कोरिया के सो चैबोन और जू जाहून को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तीरंदाजी में भारत के लिए यह पहला स्वर्ण है। वहीं 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड टीम में रामबाबू और मंजूरानी की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश के मिक्स्ड डबल्स में अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी को सेमीफाइनल में मलेशिया के आइफा बिनती अजमान और मोहम्मद यासफिफ बिन कमाल के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा और कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय महिला मुक्केबाज परवीन हुड्डा बॉक्सिंग के 57 किलोग्राम फाइनल में चीनी ताइपे की लिन यू टिंग से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। और उधर स्क्वाश के दूसरे सेमीफाइनल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हांगकांग की ली काई और वोंग ची हिम को 2-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को सीधे गेमों 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कुश्ती के ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम सेमीफाइनल में भारतीय पहलवान सुनील कुमार ईरान के नासेर अली जादेह के खिलाफ 1-5 से हार गए और अब कांस्य पदक के लिए लड़ेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क से अंकुर सिंह।
इस समय एशियाई खेलों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हॉकी का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-2 से बढ़त बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत ने इस बार एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। श्री ठाकुर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विभिन्न खेल विधाओं के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को संभव कर दिखाया है। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में देश और विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर इस मेले में पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष मेले को लेकर पिंडदानियों के लिए विष्णुपद प्रांगण में जिला प्रशासन की ओर से विशाल पंडाल बनाया गया है। इस बार गंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए फल्गु नदी के प्रवाह में गंगा जल की विशेष व्यवस्था की गई है। ये मेला 14 अक्टूबर तक चलेगा। डॉल्फिन संरक्षण दिवस के अवसर पर बिहार में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को मनाए जाने वाले डॉल्फिन संरक्षण दिवस के तहत पटना में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और गंगा समभूमि प्रादेशिक केंद्र की ओर से गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण और लोकप्रिय बनाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कई जिलों में भारी क्षति। सेना के 23 जवानों समेत कई लोग लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की जमानत मंजूर की। बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में मूसलाधार बारिश। और भारत ने हांगचोउ एशियाई खेलों में 74 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तीरंदाजी के मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण और बॉक्सिंग में लवलीना ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।